नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय तस्मात् अर्थास्य कामास्य धर्मास्य यदपाश्रया भजताहनीयात्मानम् अनीहं हरिमीश्वरम् तस्मात् अर्था च कामा च धर्मा च यतपाश्रया भजतानि हयात्मानम् अनिहं हरिं ईश्वरम् तस्मात् अर्थास्य कामास्य धर्मास्य यदपाश्रया भजतानि हयात्ममानिहम् भजता अनीहयात्मानम् अनीहं हरिं ईश्वरम् अनीहं हरिश्वरम् जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा शब्दार्थ तात्पर्य और अनुवाद श्रवण करते हैं, दोहराइएगा। तस्मात् इसलिए, अर्था आर्थिक विकास के लिए आकांक्षाएं, च तथा कामा इंद्रिय तृप्ति के लिए आकांक्षाएं, च भी धर्मा धर्म के कर्तव्य, च तथा यत जिस पर अपाश्रया आश्रित भजत पूजा करो, अनिहया उनके लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित, आत्मानम परमात्मा को अनिहम वीरस हरिम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ईश्वरम ईश्वर को। अनुवाद, आध्यात्मिक जीवन के चार सिद्धांत, धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष। यहाँ पे देखिए, धर्म अर्थ काम, श्लोक में धर्म अर्थ काम का शब्द आया है लेकिन मोक्ष का शब्द नहीं है, लेकिन ये श्रील प्रभुपाद का अपना मत है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की रुचि पर आश्रित हैं, अतएव हे मित्रों, भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन करो, बिना किसी प्रकार की इच्छा किए निष्काम भाव से परमेश्वर पर आश्रित रहकर भक्ति पूर्वक परमात्मा की पूजा करो। तात्पर्य, ये बुद्धिमानी के शब्द हैं। हर व्यक्ति को यह जान लेना चाहिए कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हम जिस धर्म को स्वीकार करते हैं वह भागवत धर्म होना चाहिए, जिसकी संस्तुति प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। यही कृष्ण का उपदेश है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। कृष्ण के चरण कमलों में शरण ग्रहण करने का अर्थ है भागवत धर्म या भक्ति के विधि विधानों के अनुसार कर्म करना। जहाँ तक आर्थिक विकास का संबंध है, हमें अपने अपने वृत्ति पर कर्तव्य करने चाहिए, किंतु उनके फलों के लिए भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूपेण आश्रित रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हें अपने वृत्ति पर कर्तव्य करने का अधिकार तो है, किंतु कर्म के फलों का अधिकार तुम्हें नहीं है। मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, किंतु फल के लिए कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, हमारी एकमात्र कामना यही होनी चाहिए कि हम कृष्ण भावनामृत के कार्यों को संपन्न करें। हमें कर्म मीमांसा दर्शन से भ्रमित नहीं होना चाहिए। इसके अनुसार यदि हम गंभीरता पूर्वक अपना कर्तव्य करते रहें तो उसका फल स्वतः प्राप्त हो जाएगा, यह तथ्य नहीं है। अंतिम फल तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की इच्छा पर निर्भर करता है। अतएव भक्ति में भक्त भगवान पर पूर्णतः आश्रित रहता है और निष्ठा से अपने वृत्ति पर कर्तव्य संपन्न करता है। अतएव प्रहलाद महाराज ने अपने मित्रों को सलाह दी कि वे कृष्ण पर पूरी तरह निर्भर रहें और भक्ति पूर्वक उनकी पूजा करें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरांध्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वंदे परमानन्दमाधवं। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम श्री श्री राधा श्याम सुंदर गौर नितय श्री श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और यहाँ पे उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवीगण और अदृश्य रूप से उपस्थित सारे देवी देवताओं और जो इंटरनेट के माध्यम से इस कथा को श्रवण कर रहे हैं उनके श्री चरणारविंद में मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और कृपा की याचना करता हूँ। जो ये जो श्रीमद् भागवतम जो मुक्त जीवात्माओं की वार्ताएं हैं उसके बारे में उस भगवान के दिव्य चरित्र के बारे में भगवान के भक्तों के दिव्य चरित्र के बारे में मैं एज इट इज दोहरा सकूं जो साधु गुरु शास्त्र के द्वारा सम्मत हो हमारी खुद की कोई बानी ना हो ऐसा आप सब भक्तगण मुझ अधम पतित पे कृपा कीजिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्त को विदित है जो ये जो चरित्र अभी चल रहा है यहाँ पे प्रहलाद महाराज का चरित्र। प्रहलाद महाराज यहाँ पे भागवतम के सातवें स्कंद में जो लगातार कई चैप्टर्स के अंदर में अपने मुख से दिव्य वाणी का प्रयोग किए हैं जो असुर बालों को संबोधित करते हुए हम सब के लिए बहुत बड़ा दिव्य उपदेश छोड़ के गए हैं और ये इतना उत्कृष्ट उपदेश है जो हमें अपने जीवन के पग पग पे इसकी जरूरत है। ये अलग बात है कि हम इसको नज़रअंदाज करके अपने धुन में रमे हुए हैं। जो व्यक्ति इसका सहृदय से निष्ठा के साथ प्रहलाद महाराज के चरित्र का आस्वादन करता है पठन पाठन करता है उसको भगवान श्री कृष्ण भगवान गोविंद के श्री चरणारविंद में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। यही मनुष्य का परम लक्ष्य है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जो हमारे आचार्य हैं स्वयं भगवान राधा कृष्ण के मिलित विग्रह इस जगत में आए हम सबको भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंतिम में भगवत गीता का ज्ञान दिए भगवत गीता हम सब के लिए छोड़ करके गए लेकिन हम सब खास करके मैं इतना मूर्ख प्राणी हूँ जो भगवत गीता के उस वाणी को अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। जब देखे भगवान जो मैं तो भगवत गीता का ज्ञान इन जीवात्माओं के लिए दे करके आया लेकिन इसको व्यक्ति तो लाल पोटरी में बंद करके अपने घर के किसी कोने में दुबका दिया है तो उसके लिए भगवान को फिर से दयावश इस धराधाम पे राधा कृष्ण के मिलित विग्रह के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु 536 वर्ष पहले नदिया ग्राम में कलकत्ता के शहर में बंगाल में आए और हम सबको भक्ति भगवान का शरणागत कैसे होना चाहिए तो यहाँ पे ये दिव्य उपदेश दिए और वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इस चरित्र को लगातार कई बार श्रवण करते हैं। तो क्योंकि ये दिव्य चरित्र हम सब के लिए है इसमें बहुत ही अच्छा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी दिए हैं। देखिए भगवत गीता की फिलॉसफी लोग बताते क्या है जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान यही है ना ये श्लोक है 2.47 भगवत गीता यहाँ पे है ना कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले सुकदाचन इसका फल ये नहीं होता है इसका ये आंसर नहीं होता जैसे कि भौतिक जगत के लोग इस बात को दोहराते हैं जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। कई बार ऐसे कर्म होते हैं कई व्यक्तियों को आप लोग देख रहे होंगे उसका कर्म हमेशा गुंडे वाली होता है लेकिन उसकी फिर भी बहुत ज्यादा पदोन्नति होती रहती है ना लेकिन है तो उसका कर्म का ही प्रभाव लेकिन किसी और पूर्व कर्म के प्रभाव से ऐसा हो पाता है। लेकिन कर्म का हमारा अधिकार है इस श्लोक का जो मेन जो निचोड़ है उसमें भगवान बताते हैं जो हमारा अधिकार है केवल और केवल कर्म पे, और कर्म को करते हुए केंद्र में किसको रखना है, भगवान श्री कृष्ण को। भगवान श्री कृष्ण को आश्रय ग्रहण करके और उनसे इस कर्म का फल का आशा नहीं करना है। देखिए भगवत गीता के छठे अध्याय का पहला श्लोक बोलते हैं सन्यासी की परिभाषा, योगी की परिभाषा क्या है। सन्यासी का मतलब ये नहीं होता हमने पति पत्नी बांधव अपना धन समाज छोड़ के हमने वृंदावन में वास कर लिया, इसका मतलब सन्यासी का नहीं होता है। सन्यासी का मतलब होता है मेन जो हम अपने कर्म फल का त्याग कर रहे हैं। देखिए सब चीज का त्याग करना आसान है लेकिन अपने कर्म फल का त्याग करना बड़ा मुश्किल है। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 8वां श्लोक, 9वां श्लोक, 10वां श्लोक, 11वां श्लोक में आप देखिए लगातार भक्ति के उपदेश भगवान दे रहे हैं। उसमें अंतिम में बोलते हैं कर्म फल का त्याग। कर्म फल का त्याग सबसे उत्कृष्ट चीज होता है जो सबके बस की बात नहीं होता है। तो कर्म फल, कर्म करते रहिए भगवान पे आश्रित होकर के, भगवान इसका जो भी फल देंगे उसको सहर्ष स्वीकार करके ऐसा रखना चाहिए भाव मन में। तो ये प्रहलाद महाराज बहुत सारे श्लोक अभी तक दिए हैं यहाँ पे। इससे पहले ये जो पहला श्लोक है ये भक्ति का श्लोक है, भागवत धर्म का ज्ञान अभी लगातार कई श्लोकों में भाग ये प्रहलाद महाराज देंगे, ये इसमें से पहला श्लोक है। लेकिन इस श्लोक से पहले जैसे यहाँ पे लिखे हैं तस्मात अर्थाश्च, तस्मात का मतलब होता है जो पीछे जो बताए हैं प्रहलाद महाराज जी क्या क्या चीजें बताए, आप लोग श्रवण जो रेगुलर हैं उनको जानकारी होगा जो प्रहलाद महाराज यहाँ पे बहुत सारे चीजों की जानकारी दे रहे हैं। कह रहे ये जो देह है ना ये क्या है, उपाधि है, ये देह जो अभी मुझे मिला है ये क्षण भंगुर है, अशाश्वत है। लेकिन हम सबका जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से करोड़ों करोड़ों योनियों में भटकते हुए हमने हम आत्मा इस देह को धारण करते आए हैं, और देह को धारण करने की हमारी टेंडेंसी प्रवृत्ति हो गई है, और इतना हम आसक्त हो गए इस शरीर से, इतना मन झुकाव हो गया है जो इस शरीर को ही अपना आत्मा जो है उसी को शरीर को ही आत्मा समझ करके इस शरीर के साथ पूरा का पूरा व्यवहार करते हैं, और शरीर में ही हमारा पूरा का पूरा दिनचर्या, शरीर के ही हिफाजत के लिए, शरीर की ही रक्षा करने के लिए सारे के सारे कार्यकलाप होते हैं। हम लोग शरीर को चलाने के लिए बहुत ऐसे यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, बहुत सारे चीज करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर में, देह के अंदर में जो देही है ना उसके लिए हम सब कुछ भी नहीं करते। देही जो आत्मा है यानी कि आत्मा का खुराक श्रीमद् भागवतम, भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, भक्तों का संग, धाम वास, ये सब है। और हम सब भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण अपने जिह्वा से भूल करके हम लोग उस देह का क्या बोलते हैं लीपा पोती करने में, पॉलिश लगाने में लगे रहते हैं। वर्षों से हमने कितनी सारी धन संपत्ति बाप दादा की खर्चा करके इस शरीर की पॉलिशिंग में लगा दिए, और फिर भी शरीर देखो 10 जगह से टेढ़ा है, काला है, धब्बा है, क्या क्या है। वो जो भगवान ने बनाया, इसलिए कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है ना इस शरीर में फंस करके अपना जो मूल्यवान समय है उसको व्यर्थ में गवाता है। तो कह रहे हैं शरीर की कई गतियां होती है जो पीछे कई श्लोक में बताए हैं, जैसे महाराज जी कल बता रहे थे जो शरीर जो है ना, देखिए शरीर के लिए लड़ाई करता है। जब बच्चा जन्म लेता है, मान लीजिए गर्भ में बच्चा गया, तो वो जो गर्भवती औरत होती है वो बताओ ये मेरा बच्चा है। जब बच्चा जन्म लेता है उसकी माता पिता क्या बोलते हैं, ये मेरा संतान है। बच्चा जब जवान हो जाता है, उसकी जब शादी हो जाती है, तो वो जो पत्नी नवविवाहिता आती होती है, ये मेरा पति है। व्यक्ति एक है, देख लीजिए चेंज हो रहा है इसका अधिकार स्वामी। अब वो बोलता है, उसके बाद वो व्यक्ति जब नौकरी करता है तो जो नौकरी जिसके यहाँ नौकरी करता है उसके जो स्वामी होते हैं वो व्यक्ति कहता है ये मेरा नौकर है। जब व्यक्ति मरणासन हो जाते, जिस देश में जन्म लेता है वो देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्र, वो अपने जनता के रूप में उसको काउंट करते हैं, उस पर अधिकार करते हैं। और जब व्यक्ति मर जाता है तो ये शरीर किसका होता है? या अगर इस शरीर को दफना दिया गया, जमीन में, जमीन मिल गया इसको, तो इसको कीट खाएगा, कीट जो जमीन के अंदर में जो कीड़ा है, या तो उस कीड़ा का होगा ये शरीर। अगर किसी गलती से ये धरती पे पड़ा रह गया ये शरीर, तो ये कुत्ते भालू सियार के भोजन हो जाएंगे। तो इस पे इस शरीर का असली वारिस मालिक कौन है? इस शरीर का असली, यही चीज हमें समझना है, जो इस शरीर का असली वारिस कोई भी नहीं है। ये शरीर हमें एक साधन स्वरूप मिला है, जिस साधन का आज प्रयोग करके भगवान के, भगवान जो मनुष्य को विशेष प्रकार का इंटेलिजेंस बुद्धि दिया है, उस बुद्धि को प्रयोग करके इस साधन को उपयोग करना है। और साधन का उपयोग किसके लिए करना है? भगवत भजन करने के लिए, भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण को भजन करने के लिए। ये वर्णाश्रम धर्म का यही इनमें कह रहे हैं, वर्णाश्रम धर्म में चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्व कर्म करियो से रौरवे परिजने। ये चार तरह के वर्ण है, चार तरह के आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वो ब्राह्मणोचित सारे सारे कर्म कर रहा है, और ब्रह्मचारी है, उसके बाद क्या है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, संन्यास है। ये वर्ण और आश्रम को आधार बना करके सारे कर्म कर रहा है, लेकिन चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजी, अगर वो व्यक्ति ये वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है लेकिन भगवान श्री कृष्ण का भजन नहीं कर रहा है ना, तो वो व्यक्ति कहाँ जाएगा? रौरवे परिजने, ये रौरव नामक नरक में उस व्यक्ति, जैसे सारे कर्म किया लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख करके नहीं कर्म किया, तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा? रौरव नरक में चला जाएगा। और वर्णाश्रम धर्मस्थ पूजनम मधुसूदनम कालम नयतियो ब्रह्मस्तस्य तुष्यति। ये भगवान शिव ये परशुराम जी को ये उपदेश दे रहे हैं, जो ये श्लोक उसी समय में बोला गया है। अगर वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन न पूजनस्य मधुसूदन, अगर मधुसूदन का पूजन नहीं करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का पूजन नहीं करते हैं, तो हमारी जो आत्मा है ना, ब्रह्म है ना, वो संतुष्ट नहीं होता है। शरीर की हिफाजत कर लें और आत्मा की हिफाजत नहीं किए, तो हम अपनी जिंदगी को अधूरा छोड़ दिए, यही बात इसमें बता रहे हैं। तो चार तरह के आश्रम ग्रहण करने के बावजूद हमें सेंटर में भगवान को रखना है। भगवद गीता के 18वें अध्याय का 46वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, यत् प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वमिदं ततम् स्वकर्मणा तमव्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जो व्यक्ति भगवान की उपासना करता है, जो कह रहे हैं यत् प्रवृत्ति भूतानां, जो भगवान इस जगत में सभी भूतों में भगवान परमात्मा के रूप में हैं, और ये न सर्वमिदम ततम, भगवान सर्वव्यापक हैं, सब जगह हैं, ये बात मन में रख करके स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, जो व्यक्ति ये भाव रखता है भगवान सभी जीवों के अंदर में परमात्मा के रूप में विराजमान है, भगवान श्री कृष्ण इस पूरे जगत में जड़ जंगम सभी चीजों में भगवान यहाँ पे व्याप्त है, इसको भाव में रखते हुए स्वकर्मणा, वो अपने कर्म को करता है, तो व्यक्ति क्या होता है? तमोवर्च्य सिद्धि, वो जो अर्चना है, पूजा है, वो उसको सिद्धि को प्राप्त कराता है। लेकिन जिसके मन में ये भाव नहीं है और स्वकर्मना, स्वकर्म कर रहे हैं, तो उसको फिर सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो। भगवान भगवत गीता की इस 46वें श्लोक से पहले 44वें श्लोक, 45वें श्लोक और उससे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के स्वभाव का कर्म बता रहे हैं, और इसके बाद ये श्लोक निचोड़ बोल रहे हैं, माने स्वकर्म करिए लेकिन सेंटर में कौन होना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की भजन अगर नहीं करेंगे ना, तो हमारा फिर कल्याण नहीं होगा। जरा मरण मोक्षाय मामा श्रीत्यतन्त ये ते ब्रह्म तद विदु कृष्णस्तन अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ये जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, वो ब्रह्म के पद पे होते हैं। ब्रह्म के पद पे होना मीन्स व्यक्ति को ये पता होता है जो मैं आत्मा हूं, मैं एक शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। वो व्यक्ति को इसका पूरा का पूरा पता होता है, उसी को बोला जाता है ब्रह्म पद पे आसीन होते हैं और अपने दिव्य कर्म को करते रहते हैं। दिव्य कर्म क्या है? जरा मरण मोक्षाय मामा श्रित्य यतन्ति। कह रहे हैं वृद्धावस्था से लेकर के मरण तक मोक्ष की प्राप्ति के लिए किस पे यत्न? मामा श्रित्य, भगवान पे आश्रित होकर के यतन्ति। जो व्यक्ति भजन करता है भगवान का आश्रित होकर के, भगवान का भजन करता है, ते ब्रह्म तद विदु, वो व्यक्ति जानकार होता है भगवान को, ब्रह्म पद को प्राप्त कर पाता है। वो उसका कर्म जो है इस अखिल जगत में व्याप्त होता है। मामा श्रित्य मतलब भगवान को जो है ना सेंटर में बनाया है। भगवत गीता के छठे अध्याय का अंतिम श्लोक क्या बताते हैं? 47, योगी नाम अपि सर्वेशाम मत गते अंतर आत्मना। यहां भी जो भज धातु, यहां पर बहुत सारा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जो भज धातु का प्रयोग किए हैं यानी भगवान का भजन करना। योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो ये भक्ति योग का जो विज्ञान है वो सबसे बड़ा विज्ञान है। चाहे आप कर्मी व्यक्ति हो, कर्मकांडी हो, चाहे ज्ञान से मिश्रित भक्ति कर रहा हो, चाहे मान लीजिए योग से काम कर रहा हो, इस सब का फल जो ब्रह्म ज्योति तक जाता है। लेकिन भगवान की भक्ति, जो भगवान का आश्रय लेकर के भक्ति योग का जो पालन करता है जो योगी, वही चरम गंतव्य को प्राप्त करता है। तो इसको प्रहलाद महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे देखिए कह रहे हैं, जो हमें भागवत धर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, भागवत धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन आश्रय में किसके रह करके? आश्रय में गुरु के आश्रय में रह करके, आचार्य के आश्रय में रह करके, साधु गुरु शास्त्र के आश्रय में रह करके हमें जो है भगवान का भजन करना चाहिए। और महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना महत्पाद रजो अभिषेकम, बिना भगवान के भक्तों को सेवा किए बगैर हम अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पे बोल रहे हैं आप अपना कर्म करते रहिए, लेकिन हमें कर्म के साथ साथ भागवत धर्म का पालन करने के साथ साथ, भागवत धर्म होता क्या है? भागवत धर्म का जो पालन करना होता है, इसको मेन मीनिंग क्या समझ सकते हैं हम? सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्ष इस्वामी मासुच। 18.66 भगवत गीता, जो ये भगवत गीता का निचोड़ बताते हैं, सारे धर्मों को त्याग करके। तो सारे धर्म का मतलब क्या होता है? श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बताते हैं सर्व धर्म का मतलब होता है वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके। ये जो अभी वर्णाश्रम धर्म के बारे में अभी पढ़े, जो वर्णाश्रम धर्म को त्याग करके एक ही धर्म होना चाहिए, और वो कौन सा धर्म है? मद आश्रया कृष्ण भक्ति, भगवान कृष्ण की भक्ति करना और पूर्ण शरणागत होकर के भगवान की भक्ति करना। और किस तरह से भक्ति करना है? अनन्य चिंतियंतु माम, अनन्य का मतलब होता है न कोई अन्य, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण का भजन करना है। तो सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, ऐसा जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है, चरण कमलों में शरण ग्रहण करता है भगवान का, तो वो भागवत धर्म के विधि विधान को आसानी से पालन कर सकता है। भागवत धर्म क्या है? देखिए, जैसे आप सब भक्तगण कितने भाग्यशाली हैं जो वर्षों वर्षों से धाम में वास कर रहे हैं और भागवत धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, अपना कर्म भी कर रहे हैं, स्वकर्म कर रहे हैं, और सेंटर में कौन है? भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद और हमारे आचार्यगण। तो यही चीज समझ करके हमें अपने कर्म को अंजाम देना है। तो वो कर्म जो है ना फलीभूत होता है, वही अकाम कहलाता है। सुबह 3 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक एक शुद्ध भक्त का कर्म क्या होता है? अपने दिनचर्या को इस प्रकार से वो बांट करके रखा रहता है, अपने आप को इस तरीके से एब्जॉर्ब करके रखता है जो उसके लिए थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता जो किसी और चीजों में अपने आप को लगा ले। ये है भागवत धर्म के विधि विधानों का पालन करना। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने हमें नियम दिए हैं और भागवत धर्म के पालन करने के लिए जो अनुशंसा किए हैं उसका हमें अगर दृढ़ता से अगर हम पालन करते हैं ना, तो ये 100% आप समझ सकते हैं इस बात को, जो हमें भगवान अपने शरण में जरूर ले लेंगे। तो सर्वधर्मान का मतलब समझ सकते हैं जो कई तरह के जो धर्म इस जगत में फैला हुआ है, शरीर का धर्म, समाज का धर्म, पत्नी धर्म, स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, ऐसे इन सब सारे धर्मों को त्याग करना है और केवल एक ही धर्म है, वो है भगवान का भजन करना। कह रहे हैं मनुष्य को अपने पद के अनुसार अपने कर्तव्य करने चाहिए, किंतु फल के लिए कृष्ण पर पूरी तरह आश्रित रहना चाहिए। इस जगत में जितना भी चीज आपको दिख रहा है, सारे चीजों के मालिक कौन है? भगवान श्री कृष्ण। क्योंकि उन सारी चीजों का जो उत्पत्ति करता, सृष्टि करता भगवान श्री कृष्ण है। और जो व्यक्ति ये बात समझता है और उन चीजों का प्रयोग अपने इंद्रिय तृप्ति में नहीं करता, उस चीज का प्रयोग, सारे चीज जितने भी भौतिक जगत के चीज हैं, आध्यात्मिक जगत के चीज हैं, उन सारे चीजों का प्रयोग भगवान की सेवा में करता है, तो यो इसको क्या बोलते हैं? युक्त वैराग्य। सारे चीजों का प्रयोग भगवान श्री कृष्ण में करना है और भगवान श्री कृष्ण की भगवत्ता को समझ करके, आश्रित होकर के ये कर्म करेंगे तो भगवान श्री कृष्ण सारे कर्म के फल जो है हमें देंगे। करें हम कृष्ण भावनामृत में कार्यों को संपन्न करें। कृष्ण भावनामृत कर्म करेंगे तभी जो है हमारा कल्याण होगा। कृष्ण भावनामृत का मतलब क्या होता है? जो हमारी चेतना में हमेशा कृष्ण 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 या कृष्ण से संबंधित कार्यकलाप, उसी का मतलब होता है कृष्ण भावनामृत। छोड़ दीजिए, नहीं हो रहा तो कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है कृष्ण का ही भजन करना, हमेशा कृष्ण का ही चिंतन करना, कृष्ण के अलावा और कुछ किसी भी चीजों का चिंतन नहीं करना, यह कृष्ण भावनामृत होता है। हमारा सारा कार्यकलाप कृष्ण से संबंधित होना चाहिए और हमें अहंतास्पद और ममतास्पद का त्याग करनी चाहिए। जो अहंतास्पद, यहाँ पे श्रील प्रह्लाद महाराज यहाँ पे बता क्या रहे हैं, अभी कई सारे श्लोकों में पीछे बता रहे हैं, अहंतास्पद का त्याग करना, ममतास्पद का त्याग करना। जो अहम ममेति का जो ये बुद्धि इस जड़ जगत के साथ हमारा लगा हुआ है, इसको हमें त्याग करना ही पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा जो मैं इंद्रिय तृप्ति करते हुए भगवत धाम को चला जाऊंगा, तो ये कदापि संभव नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को वैद्य ने सलाह दिया है आपको इन सब चीजों का आपको परहेज करना है, ये नहीं खाना है और ये दवा खाना है, तो ये दवा जब खाएंगे और परहेज करेंगे साथ साथ, तो आपका जो है रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन व्यक्ति क्या कर रहा है, दवा भी खा रहा है, एक तरफ दवा भी खा रहा है और दूसरे तरफ वो सारे चीज खा रहा है जो वैद्य ने बताया, तो क्या उसका कभी भी रोग ठीक होगा? कभी भी रोग ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम परहेज नहीं कर रहे हैं। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं, जो व्यक्ति इंद्रियों का समन नहीं कर पाया, इंद्रिय भोग में अपने आप को लगा करके रखा हुआ है और भगवान का भी भजन कर रहा है, तो भगवान तो मिलेंगे लेकिन बहुत बहुत जन्मों के बाद, बहुत समय भगवान की भजन करने के बाद भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन अंततः उनको इन इंद्रियों से, इंद्रियों के भोग से अपने आप को निकाल करके इस इंद्रियों का जो भजन है ना, इंद्रियों की जो, इंद्रियों से सेवा किसकी करनी है? ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। इस इंद्रियों से, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, शरीर का मतलब होता है इंद्रियां, ये जो शरीर बना है वो इंद्रियों से बना हुआ है, और शरीर में क्या है? शरीर इंद्रियों से बना हुआ है और इस शरीर की जो उपयोग है वो भगवान की सेवा में लगाना, यानी ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यति। भक्ति की यही परिभाषा है, अपने इंद्रियों का प्रयोग, इंद्रियों को भगवान को तुष्ट करने में लगा देना है। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करोर हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकार अच्युत भाव। ये बता रहे हैं जो यहाँ पे हमारे महाभागवत जो हुए हैं, ये बता क्या रहे हैं, देखिए, इस शरीर के जितनी भी इंद्रियां हैं, सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में हमें एक एक करके लगा देना है, तभी हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, नहीं तो ये इंद्रियां जो है ना, इंद्रियों, इंद्रिय के विषय होता है। जैसे पांच मेन इंद्रियां है जो ज्ञान इंद्रियां, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, और इसको अगर हमने निग्रह नहीं किया, इसको अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, और इस ज्ञानेंद्रियों को अगर हमने भगवान की सेवा में नियुक्त नहीं किया, तो ये इंद्रियां क्या करेगा? अपने अपने इंद्रिय विषय के तरफ जाएगा, और इनके इंद्रिय विषय क्या है? रूप रस गंध शब्द स्पर्श। ये आंख क्या है? सुंदर सुंदर रूप को देखना चाहती है, गलत चित्र देखना चाहती है, नंगा चित्र देखना चाहती है, गलत जो चीजें इस जगत में व्याप्त है उसको देखना चाहती है। कान जो है दूसरों के बुराई के बारे में श्रवण करना चाहती है। तो ये इनके जो, जिसमें इसका मन लगता है ना, उसको वहां से हटा करके, इंद्रियों को, इंद्रिय विषय से हटा करके भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने में जब हम इसको लगाएंगे, तब जा करके हमारी भक्ति पूर्ण रूपेण फलीभूत होगी। और अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। अकामा सर्व कामो वा, देखिए यहां पे बोल रहे हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं भगवान की, तो कई बार क्या होता है, व्यक्ति को कुछ चाहिए होता है ना, तो भगवान से वो मांगता रहता है, और भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं जो आप गलत चीजों की अगर आप डिमांड कर दोगे तो भगवान नहीं देंगे, क्योंकि भगवान हमारे हित और अहित की बातें जानते हैं। लेकिन व्यक्ति क्या करता है, अरे यार भगवान तो दे नहीं रहा है, चलो देवी दुर्गा के शरण में जाते। अरे सबसे अच्छी बात है, भगवान शिव के शरण में चले जाते हैं, वो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, और जो चीज चाहिए तुरंत ले लो। इसलिए देखो, भगवान शिव के भक्त सबको जल्दी जल्दी सभी चीजों की प्राप्ति होती है, भगवान शिव दे देते हैं। अब वो इतना सोचते नहीं है जो हमें क्या करना है नहीं करना है। ब्रह्मा जी से देखिए, वर मांगे हिरण्यकश्यप, दे दिए, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? भगवान ने फिर उनको डांट रहे हैं, भाई आप सोच करके तो वर दिया करो, जिसका क्या परिणाम होने वाला है। तो ये जो देवी देवता के जो उपासना करते हैं, तो क्या करते हैं, जो क्षण भंगुर चीजों की प्राप्ति करने के लिए जो भगवान हमें नहीं दिया, तो हम किसकी शरणागत हो गए? देवी देवता के। तो इसको अनन्य चिंतियंतो माम नहीं बोलते, हमें कह रहे अकामा सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि। अगर अगर आपको किसी तरह की कामना है और भगवान की भक्ति करें, भगवान की भक्ति तो निष्काम भाव से, श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले हैं, जो निष्काम भाव से भगवान का आश्रय लेकर के भगवान की भगवत भक्ति करना है। निष्काम का मतलब होता है हमें कोई भी चीज नहीं चाहिए, सुई के नोक के बराबर भी हमारे मन में कोई इच्छा न रहे। अन्याभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्माद्य अनावृतम, अन्याभिलाषा किसी भी तरह की अभिलाषा नहीं रख करके जो है और भगवान का भजन करना चाहिए, तब जाकर के हमारी भक्ति फलीभूत होती। निष्काम भक्ति, किसी भी तरह का डिजायर नहीं रखना है। तो कह रहे हैं अगर आपको कोई डिजायर है अकाम, या तो भगवान की किसी तरह की डिजायर न रख करके भक्ति करें तो ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति है। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे अंदर में डिजायर है जो हमें कुछ चाहिए, तो हमें फिर भी भगवान का ही शरण लेना चाहिए, किसी और की शरण में नहीं जाने चाहिए। भगवान ही हमें सभी चीजों की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि भगवान का एक नाम क्या है, यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं हरिम ईश्वरम, हरि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं और ईश्वर शब्द का प्रयोग करें। हरि के अनेक अर्थ दुई मुख्यतम, सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन। चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज जी बताते हैं हरि के अनेक अर्थ हैं, उसमें से दो मुख्यतम है और क्या है, सर्व अमंगलता को हरने वाले ये हरि हैं। हमारे अंदर में जो कलुषित भावना है, हमारा जो हृदय कलुषित हो गया है, उसको हरते हैं, अमंगलता को हरते हैं। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिए हरे मन, और प्रेम की प्राप्ति, भगवान को प्रेम की प्राप्ति की देते हैं हमें। यहाँ पे धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति, इस जगत में जितना भी यही चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, यही चतुर्थ पुरुषार्थ है। लेकिन ये मनुष्य जीवन का मेल लक्ष्य क्या होता है, पंचम पुरुषार्थ को प्राप्त करना, और वो पंचम पुरुषार्थ क्या है, भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में अपने आप को सौंप करके और उन्हीं के चरण का आश्रय लेकर के और निष्काम भाव से उनकी सेवा करना, यही एक मनुष्य का धर्म है। तभी हमारे जीवन का मनुष्य धर्म मनुष्य के शरीर में आकर के इस साधन स्वरूप शरीर का जो परफेक्ट उपयोग होगा वो ये है। अगर हमने भगवान का भजन कर लिया और बहुत सारे लिस्ट थमा दिया, तो इससे हमें वो लिस्ट की प्राप्ति तो हो जाएगा, लेकिन जिस चीज के लिए हमने अपना घरवार छोड़ा, अपना परिवार परिजन, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति हमने त्याग दिया, लेकिन किस लिए त्यागा, उद्देश्य क्या था, कृष्ण भजन, भगवान कृष्ण को प्राप्त करना। इस ग्रेस सार्वभौम प्रभु अभी भगवत गीता के क्लास में बताए, जो एक लाइन लिख लो अपने घर में, जो हमने घर किस लिए छोड़ा, हमने अपना घर किस लिए छोड़ा, हम भगवान की भजन किस लिए करने आए हैं, ये लाइन लिख लो और चिपका लो दीवार पे और उसको रोज देखो, हमारा उद्देश्य क्या था। हम अगर उद्देश्य विमुख हो जाएंगे ना, तो हमारा मनुष्य जीवन निष्फल हो जाएगा, और पता नहीं हमें अगला शरीर कुत्ते के शरीर में जाना पड़ेगा या बिल्ली के शरीर में जाना पड़ेगा, अगला शरीर की गारंटी नहीं है। मैंने कह रहे हैं टोटली भक्ति इसी शरीर में करना है, प्रभुपाद क्या बोलते हैं इसके लिए, मैंने दिस बर्थ इज द फाइनल बर्थ टू अटेन कृष्णा कॉन्सियसनेस, और गॉड को, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का ये जो बर्थ है ना, ये फाइनल बर्थ है, दूसरा बर्थ नहीं लेना है, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्कर में हमें नहीं फंसना है। इसी को जो व्यक्ति समझता है और भगवान की भजन में अपने आप को झोंक देता है, वो व्यक्ति जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति के लिए श्रील प्रभुपाद जी अपने पास चाबी रखे हैं और उनको बैक डोर से भी भगवान की जो भक्ति कर रहा है ऐसा, उनको श्रील प्रभुपाद जी अपने धाम को ले लेते हैं। इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे जो पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को हमेशा भजन करना चाहिए, किसके लिए, पंचम पुरुषार्थ के लिए। तो बिल्व मंगल ठाकुर जी ये बहुत ही एक अच्छा श्लोक बोले हैं, उसको बोलते हैं भक्तिस्त्वयि स्थिरतरा भगवन् यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान धर्मार्थ काम गतया समय प्रतीक्षा। देखिए बिल्व मंगल ठाकुर जी, बिल्व मंगल ठाकुर जी के बारे में आप लोग सब जानते हैं। बिल्व मंगल ठाकुर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण जो है क्या करते हैं, वन टू वन बात करते थे उनके साथ, जो है एकदम खेलते थे, जो वृंदावन में रह करके भजन किए हैं पास टाइम तो आप लोग जानते हैं। कह रहे हैं भक्तिस्त्वयि स्थिर तरा, कह रहे हैं भक्तिमय सेवा, भगवान की भक्ति स्थिर हो करके एकदम चित्त को भगवान के में लगा करके और भगवान की ही भक्ति करना है। तो कह रहे हैं स्थिर चिता भगवान यदि स्यात् दैवेन न फलति दिव्य किशोर मूर्ति, तो कह रहे दैव बस देवताओं के द्वारा और ये भगवान के द्वारा क्या होगा, दैवन दिव्य किशोर मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण का जो दिव्य स्वरूप है, विग्रह है, वो हमारे सामने में यानी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो जाएंगे। और जो व्यक्ति ऐसा भजन करता है एक निष्ठ होकर के भगवान श्री कृष्ण को केवल प्राप्त करने के लिए, उसके लिए क्या होता है, देखिए मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि, ये जो मुक्ति है, मुक्ति देवी है ना, मुक्ति देवी उस भक्त के दरवाजे पे अंजलि जोड़ करके खड़े रहती है। और कैसे, कितना खड़े, वह समय प्रतीक्षा माने प्रतीक्षा करती रहती है ये भक्त कब मेरे तरफ एक बार देख लेगा, जो मुक्ति को ग्रहण करेगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम को तो छोड़ते माने छोड़ ही देते हैं, और मुक्ति जो सर्व से सर्वोत्कृष्ट वस्तु है इस भौतिक जगत के लिए, लेकिन उस मुक्ति को भी त्याग देते हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण के एक शुद्धतम भक्त, और उसके दरवाजे पे वो माने रहते हैं, प्रतीक्षा करती रहती है, और साथ में धर्म अर्थ तथा काम संबंधी सारे सुविधाएं देख रहे हैं ना। आप लोगों को ये एक्सपीरियंस होगा, जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना शुरू कर देता है ना, तो उसके सारे सुख सुविधाएं मिलना शुरू हो जाता है। उसको किसी भी चीजों की प्राप्ति करने के लिए कोई विशेष कर्म करना पड़ता है क्या? हमारे गुरुदेव हिजोलिनेश राधा गोविंद दास गोस्वामी महाराज जब अपने जन्म के लेने के बाद जब युवावस्था में हुए तो भगवान की भजन में उनका निष्ठा था पूरा का पूरा, पूरा भगवान के भजन में लगे, तो उनके पिताश्री बोलते थे जो ये बच्चे भूखे मर जाएगा, ये देखो भगवान का भजन में अभी से लग गया, इसका पालन पोषण कौन करेगा, इससे शादी कौन करेगा, इसका जीवन जो है बड़ा अंधकार में चलेगा। तो श्रील गुरुदेव बताते हैं जब हम भगवान की भक्ति करने लगे तो आज ये ऐसा नौबत है जो हम हजारों जगहों से न्योता आता है, क्या हमें पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिल रहा है, क्या हमें खाने के लिए अन्न नहीं मिला, क्या क्या भगवत महाप्रसाद इस ब्रह्मांड में कहीं भी भ्रमण करते हैं वो राजभोग क्या क्या प्रसाद जो है उनके सामने बिल बुलाए आ जाता, हाजिर हो जाता है, ये किसका प्रभाव है, भक्ति का प्रभाव। जब भक्ति का प्रभाव होता है ना, यही नारद मुनि से प्रश्न पूछा था मृगारी, जो भगवान की भजन करने के लिए बोल रहे पेट कौन भरेगा, तो कह रहे पेट का चिंता मत करो मृगारी, पेट मैं भरूंगा, और नारद जी बोल करके चले गए। और जैसे ही मृगारी जैसा व्यक्ति भगवान के भजन में लग गए तो सारे लोग जो है उनको देने के लिए सब कुछ आ गए। वो व्यक्ति मृगारी जो है रख नहीं पाता था, बोलता भाई आज ही के लिए चाहिए, क्योंकि आज ही के लिए ब्राह्मण का धर्म होता है वो संग्रह नहीं करता, आज का भोजन आज के लिए चाहिए, कल के लिए भाई कल लेकर के आना, ठीक है। तो ये भक्ति का जो है ये प्रभाव होता है। तो भगवान पे मद आश्रया अनुकूल्यन संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप तृप्ते वर्णम तथा, शरणागति का मतलब होता है रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान हमारा रक्षण करेंगे, रक्षा करेंगे, सभी चीजों की पूर्ति करेंगे, योग क्षेमं वहामि हम, जो भी चीजें चाहिए वो देंगे, जो है हमारे पास उसी रक्षा करेंगे। ये क्या होना चाहिए, विश्वास, विश्वास अगर होगा तो भगवान का भजन फलीभूत होगा। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ।